प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञानाधिकार चल रहा है। गाथा 49 चलना ना, इसमें अपन ने जयसनाचार्य की टीका पढ़ ली थी और अमृतचंद्राचार्य की टीका बाकी थी। बात तो ज्यादा कठिन नहीं है, सीधी इतनी सी बात है कि जो सबको जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, जो सबको नहीं जानता वो एक अपने आत्मा को भी सब पर्यायों सहित नहीं जान सकता, और जो एक अपने आत्मा को सब पर्यायों सहित जानता है वो सबको क्यों नहीं जानेगा, सबको भी जानेगा। इतनी ही बात है। अब उसको न्याय की भाषा में जरा विस्तार से समझाया है, थोड़ा कठिन सा लग रहा है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। अमृतचंद की टीका। प्रथम तो यह आत्मा ज्ञानमय होने से ज्ञातित्व के कारण वस्तुतः ज्ञान ही है, और वह ज्ञान प्रत्येक आत्मा में रहता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है। अब जब भाषा ऐसी अटपटी है ना, तो लगता भी क्या वो क्या कह रहे हैं। देखो कि आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानमय होने से एक हेतु, और फिर ज्ञातृत्व के कारण वो जानने के स्वभाव वाला होने से वो ज्ञान ही है, यानी आत्मा और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ये बात कह रहे हैं। और ज्ञान प्रत्येक आत्मा में रहता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है। अब ये ज्ञान हरेक आत्मा में है, हरेक आत्मा में है, इसका क्या मतलब हुआ? सामान्य और विशेष में तो समझते हो क्या है, जो संग्रह नए का विषय होता है ना वो सामान्य होता है, फिर जो व्यवहार नए का विषय होता है फिर वो विशेष होता चला जाता है। तो जो महासत्ता होती है जिसे बोलते सद्द्रव्य लक्षण, सत सामान्य, जिसमें दुनिया का कोई भी पदार्थ नहीं बचता है, फिर दूसरा बोलते हैं सच्चिदानंद। तो एक सत सामान्य है और दूसरा चिद सामान्य है, और तीसरा आनंद है, वो विशेष है। चिद सामान्य क्या है? जो एक प्रत्येक में स्वयं स्वयं में रहे उसे बोलते हैं विशेष, और जो अनेक में रहे उसे बोलते हैं सामान्य। जो सबसे सभी पदार्थों में रहे वो तो महासामान्य हो गया, लेकिन ये सभी आत्माओं में रहता है ना ज्ञान, जानने का काम सभी आत्मा जानते हैं, इसलिए इसे महासामान्य कहा। क्या लिखा परमात्मा देखो, और वह ज्ञान प्रत्येक आत्मा में रहता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है। अब क्या कह रहा है इसमें, ये जो महासामान्य होता है इसकी चर्चा अपने सोनगढ़ में बहुत कम होती है, इसलिए मुमुक्षुओं को इससे परिचय नहीं है। माने हम अवान्तर सत्ता के बारे में ज्यादा परिचित हैं, प्रत्येक द्रव्य जुदा जुदा है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, उनमें अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी है, कोई किसी का स्वामी नहीं है, ये सब बात तो बहुत विस्तार से समझाई, लेकिन किसी दृष्टि से वे सब एक हैं। ज्ञान की दृष्टि से सभी आत्मा एक हैं, क्योंकि तुम में ज्ञान हम में ज्ञान, यद्यपि तुम्हारा ज्ञान तुम में है तो हमारा ज्ञान हम में है, हमारे ज्ञान से तुम का कुछ काम नहीं ले सकते, और तुम्हारे ज्ञान से हम जानने का काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सेपरेट हैं, फिर भी जानते 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 तो हैं ना, तो उसे सामान्य बोलते हैं। तो चित सामान्य का होता है, ज्ञान सामान्य का होता है। तो ये कहते हैं कि ये ज्ञान ज्ञान सब में है, इस दृष्टि से हम जैसे कल बोला था ना कि एक हार्ट डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसकी बारीकियां जान ली, तो सबके हार्ट की बारीकियां जान ली, क्योंकि वे हार्ट सामान्य हैं, है ना, ज्ञान सामान्य है। मैं अपने ज्ञान से जानता हूं तो तुम्हारे ज्ञान से मैं जानने का काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये तो जानता हूं कि तुम्हारा ज्ञान भी ऐसा ही है जैसा मेरा ज्ञान है ना। इसे बोलते तो चित सामान्य है, महासामान्य है, वह प्रतिभासमय महासामान्य, प्रतिभासमय अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है और उन विशेषों के निमित्त सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो महासामान्य है ना, कौन ज्ञान, अब वो ज्ञान उसके विशेष कौन है, सब आत्मा सब में है, एक एक आत्मा को गिनेंगे तो वो विशेष कहलाएंगे, वो सब में गिनेंगे तो वो सामान्य कहलाएगा। ज्ञान सामान्य माने सभी आत्मा में जो ज्ञान है उसे एक गिने तो ज्ञान सामान्य, और सभी में अलग अलग है ऐसा गिने तो ज्ञान विशेष है ना, अन्य विशेषों में व्याप्त होने वाला है। अब उन विशेषों के निमित्त क्या है, सभी द्रव्य, निमित्त माने ज्ञेय रूप निमित्त, जानते हैं ये ज्ञेय रूप निमित्त क्या होता है, जैसे कर्ता कर्म होता है तो वो ये करता है और ये उपादान करता है, ये निमित्त करता है, तो ये जानने रूप क्रिया जिसके साथ होती है उसे ज्ञेय रूप निमित्त बोलते हैं, माने वो हमारे हम उसके कर्ता नहीं है लेकिन हम उसे जानते हैं, तो हमारे ज्ञान में वो प्रतिबिंबित हुए तो जो प्रतिबिंबित हुए वे कहलाए ज्ञे, और जिसने जाना वो हो गया ज्ञान के ज्ञाता, तो उन्हें कहते हैं ज्ञेय रूप निमित्त, माने करना नरना कुछ नहीं है, हमारे सिर्फ वो जानने में आते हैं। तो ये सारा लोकालोक हरेक आत्मा का जो छाये ज्ञान से युक्त है उनका ये रूप निमित्त है, और वो ऐसा नहीं कि जब जानेगा तब होगा निमित्त, वो तो सदा ही जान रहा है इसलिए वो सदा ही निमित्त है। क्या सभी पर्याय हैं। अब जो आत्मा सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय जिनके निमित्त हैं, उसी बात को रिपीट किया है, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले प्रतिभासमय महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। अब जो उस आत्मा जिसमें महासामान्य में सब विशेष शामिल हैं, वो एक एक विशेष में जो उनकी ज्ञान पर्याय हैं, उनमें वो महासामान्य है ना वे शामिल हैं, और ये सब मिलाकर इन सबको जो ज्ञेय नहीं बनाता है, अब ये उन्हें ये कहना कि जो उन सबको ज्ञेय नहीं बना सकता तो वो अपनी आत्मा को भी संपूर्ण पर्यायों सहित ज्ञेय नहीं बना सकता। अब बात छाये ज्ञान में क्या होता है कि वे एक साथ ही बनती हैं, ऐसा नहीं है कि हम जब चाहें तो तुम्हें बनाए और नहीं चाहें तो नहीं बनाए। जैसे मैं कहता हूं ना, वो डॉक्टर ने सबके हार्ट की पोजीशन जान ली कि जैसे मैंने दो आदमियों के हार्ट देखे तो सबके ऐसे ही हार्ट हैं, लेकिन फिर भी वो सबके हार्ट को खोलता थोड़ी फिरता है, देखता जब जब जिसको जरूरत समझता है तब करता है, तो केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है, वो तो फिर प्रति समय उनके गे वो सारे पदार्थ बनेंगे, तो अनंत आत्मा ज्ञान छाये ज्ञान वाले हो गए, तो वो सारे पदार्थ अनंत आत्माओं के ज्ञेय प्रति समय बन जाए। अब जो हम समझ रहे हैं ना, ये हमारी बात तो गुप्त है, अब हमें किसी को पता नहीं है, वो बात अनंत लोगों को पता है। जैसे लोक में कहावत है कि अंधा पेशाब करे अंधा मूते वो जगत त्रय देखे, वो गांव के लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो जगत त्रय का मतलब ही नहीं समझते हैं, सब देखें कहते मैंने, वो मूल भाव तो समझते हैं लेकिन तीन लोक के लोग जगत त्रय आप समझ, तीन लोक तो तीन लोक के लोग देखें उसे हैं? तो आप तीन लोक के लोग कौन देख रहे, सारे देव देख रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं, तो जगत त्रय देखे यानी वो अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं ना, और यहाँ भी जो छाया ज्ञान के धारी है वो सब देख रहे हैं और प्रति समय देख रहे, उनको नहीं देखने की सुविधा नहीं है। आपको लगता है क्या बात कर रहे, नहीं देखने की भी सुविधा है? अरे नहीं देखें तो अच्छी बात है कि नहीं, उनको अनिवार्य है ना देखना, हमको तो इस सुविधा है ना कि कोई गंदी चीज देखें, यहां लैट्रिन पड़ी है तो अपन दूर से निकल सकते हैं, ऐसा मुंह कर सकते हैं, उधर को नहीं देखें ऐसा हम कर सकते हैं ना, लेकिन अरंत भगवान को कुछ नहीं कर सकते। उनके ज्ञान के गे तो बे बने गे। अब जरा समझ लेना कि एक बहुत बदबूदार पदार्थ है, तो वो जब हमारे जानने में आता है तो हमको कितनी तकलीफ होती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि जाने। और अनंत भगवान को नहीं जानने की सुविधा नहीं है, तो उतना बदबूदार पदार्थ और उनको जानते रहना अब कितना तकलीफ का काम है, धोखे से अरहंत बन मत जाना। लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं है, क्यों नहीं है कि हमारे जानने के साथ हम उसे भोगते भी हैं। हमारी जो इंद्रियां है ना दो काम करती है ना, ये गेयों को जानने का और ये गोयों को भोगने का है ना, तो हम उस गंध दुर्गंध का सुख दुख भी उठाते हैं और जानते भी हैं। ऐसे ही कृष्ण इंद्री के विषय को, चक्षु इंद्री के विषय को, कर्ण इंद्री के विषय को, हमारे भोग पक्ष और ज्ञान पक्ष दोनों चालू रहते हैं, लेकिन वो उनके कर्ता भोगता तो नहीं है, अज्ञाता दिशता है। आप समझे ना, ये जो ज्ञान में और करने में जो महान अंतर है ना, तो जो हमारे सोनगढ़ में ये बात चली थी कि भेद विज्ञान है कि पर का मैं पर मैं नहीं हूं, पर का मैं स्वामी नहीं हूं, पर का मैं कर्ता नहीं हूं, पर का मैं भोक्ता नहीं हूं, तो यहां तक तो सब बातें सब ही करते थे कि भाई जीवा जीवाधिकार में पर के एकत्व ममत्व का निषेध किया और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया, तो ये सभी बताते, सभी पंडित बताते हैं, चार बातें तो सभी कहते थे ना। तो जो अपने को जो महापंडित मानता था पहले पहले सुन के आया था गुरुदेव से, तो नहीं पर को जानता भी नहीं है उसको कह करके, फिर वो ऐसा समझता था, चारों तरफ देखता था कि अभी मैंने जग तीन जग जीत लिया, मैंने जानना भी वैसे ही संबंध है जैसा कर्ता भोगता है। अब यहां देख कितना क्लियर है कि वो जानते तो हैं, वो नहीं जानने की उन्हें सुविधा नहीं है, लेकिन नहीं जानने में कोई आराम हो और जानने में उन्हें कोई तकलीफ हो हम जैसी, ऐसा भी तो नहीं है ना, क्योंकि उन्हें भोगना तो नहीं पड़ता ना। अग्नि की गर्मी को वे जानते हैं तो वो गर्मी उन्हें वो भोगनी तो नहीं पड़ती ना, वे कर्ता भोगता नहीं है उसके, इसलिए उनको विज्ञान में जानते रहे, इसका फर्क पड़ता है। यानी उनका जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद है उसमें रंच मात्र भी विघन नहीं पड़ता। तो जानने में जब विघन पड़ता है हमारे आनंद में भोग में, तो हम जानने का निषेध करते हैं। अब हमने जब जब हमारे भोग में आनंद हमने देखा पांच इंद्रियों के भोग में, तो हमने जानने का निषेध किया है ना, और उन्हें पर में भोगने में हमें तकलीफ दिखी जो हमें अरुचिकर था, तो हमें चाहिए कि पर को हम जाने भी नहीं। और फिर यदि हमको ऐसा कोई मिल जाए सिद्धांत वाला कि पर को जानता ही नहीं, तो फिर तो हमको बहुत अच्छा लगेगा ना, कि ऐसा कोई रास्ता हो गए कि हम पर को जाने ही नहीं, तो ये जानने की झंझट से तो हम बच जाएंगे ना। ख्याल में है ना, देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, अब जो आत्मा सभी द्रव्य उनकी सभी पर्याय जिनके निमित्त हैं जिनके निमित्त हैं माने जो गे बने जाने जाते हैं। ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले प्रतिभासमय महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, नहीं जानता है जो, वह प्रतिभासमय महासामान्य के द्वारा व्याप्त प्रतिभासमय अनंत विशेषों के निमित्तभूत सभी द्रव्यों और उनकी सभी पर्यायों को प्रत्यक्ष कैसे कर सकेगा। बस उसको अनुभव व्यतिरेक ऐसा घटा दिया है कि वो नहीं जान सकता है, उसको इस प्रक्रिया से प्रवेश करना पड़ेगा। इससे यही फलित होता है कि जो आत्मा को नहीं जानता वह सबको भी नहीं जानता। इससे निश्चित होता है कि सबके ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। बस आप साधारण जनता तो ये बुजुर्ग माताएं बहने हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, ये तो भाई इतना जान लें तो ये गाथा न जान लें, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो एक एक अक्षर का अर्थ समझ में आना चाहिए, है ना। वो महासामान्य विशेष, सामान्य विशेष और फिर जो उनके संबंध, ये सब ख्याल में आना चाहिए तुम्हारे तो, हैं? तुम पंडित बन गए हो और उन्हें तो आत्मा का कल्याण करना है, तो आत्मा के कल्याण के लिए इतना ही पर्याप्त है कि जो सबको जानेगा वो अपने को जानेगा, जो अपने को जानेगा वो सबको जानेगा, जो सबको जानता है अब उसका आत्मा तो उसके ज्ञान का विषय होता ही है, और सब भी पदार्थ प्रति समय उसके ज्ञान में झलकते रहते हैं। और ये कि उसको नहीं जानने की सुविधा नहीं है, ये नहीं जानने की सुविधा नहीं है, ये तो भाषा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि आपको नहीं जानना अच्छा लगता है ना, है? उन्हें नहीं जानते हैं वो, नहीं जानने की सुविधा नहीं है तो वो कोई उन्हें तकलीफ का काम नहीं है, क्योंकि जानने में उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं है, है ना। ऐसा होने पर देखो, एक लाइन में जो अपन ने 8-10 लाइनें पढ़ी थी ना, तो एक लाइन में उसका निश्चित भावार्थ आ गया कि नहीं आ गया। अब इस समझो कि इसे निश्चर्त तो ये है, जैसे तुम्हें मालूम है कि एक प्रश्न को, सवाल को ऐसा करना पड़ेगा, नीचे लिखा ना एक सवाल को और इसका उत्तर ये है, तो फिर तुम उस हिसाब से वो गणित का दूसरा सवाल आसानी से कर सकते हो ना, तो अपन को इसका उत्तर भी मालूम होना चाहिए कि भाई ये अंत में तो ये सिद्ध करने वाले हैं, इनमें ये सिद्ध किया है, अब वो सिद्ध नहीं करें हम और सीधा बता दें और वो हमारी श्रद्धा का विषय बन जाए, मैंने हमें पक्का भरोसा उस बात पे हो जाए तो बस हमारा काम हो गया। उन तर्क और युक्तियां जो बीच में दी गई है ना, उनकी हमें जरूरत नहीं है तो नहीं जानेंगे। ऐसा होने पर आत्मा ज्ञानमयता के कारण स्वयं संचेतक होने से, ये आत्मा स्वयं संचेतक है माने स्वयं चेतने वाला है माने स्वयं जानने वाला है, काल के कारण, क्योंकि वो ज्ञानमय उसका स्वभाव है, और ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी, अब वस्तु रूप से विचार करें तो ज्ञाता अलग है और ज्ञेय अलग है, अपना आत्मा ज्ञाता है और अपना आत्मा ज्ञेय है, उस बात को यहां छोड़ दो, यहां अभी पर ज्ञेय की बात चल रही है। पर ज्ञेय में पर के आत्मा भी हो सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं कि ज्ञाता ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी, वस्तु रूप से वास्तव में तो वे भिन्न भिन्न है, अन्यत्व माने भिन्नता होने पर भी, प्रतिभास और प्रतिभास मान इन दोनों का स्व अवस्था में अन्योन्य मिलन होने के कारण उनमें भेद करना अत्यंत अशक्य होने से सर्व पदार्थ समूह आत्मा में प्रकट हो गए हों की भांति प्रतिभासित होता है, ज्ञात होता है। अब कहते बिल्कुल भी अलग अलग हैं, कले नक्की कर लो पक्का, अब वो कहते आत्मा में वो एकदम अंदर घुस गए, उन्हें अच्छी तरह से उनका संबंध ज्ञाता गए संबंध हो गया, माने वे जानने में आ गए और ये जानने वाले हो गए, और वो संबंध अनंत काल तक के लिए, आजीवन नहीं, मोक्ष तक में भी बना ही रहने वाला है, तो अत्यंत निकटता हो गई ना, अत्यंत भिन्नता थी, वही अत्यंत निकटता हो, भेदभाव करना, अन्योन्य मिलन होने के कारण उनमें भेदभाव करना अत्यंत अशक्य हो गया। हैं तो जुदे जुदे, लेकिन जुदे जुदे करना कठिन हो गया, है ना। अशक्य होने से सर्व पदार्थ समूह आत्मा में प्रविष्ट हो गए हों की भांति, माने आत्मा में भी घुस गए, घुसे मुसे नहीं है, भांति प्रतिभाषित होते हैं, ज्ञात होते हैं। अभी वो तो वो गाथा निकल गई कि नहीं निकल गई, ये प्रविष्ट हो गए, कीलित हो गए, आएगी अभी, है ना, लेकिन उसकी ध्वनि आ गई है, मन अत्यंत निकटता का संबंध बता रहे कि अभी ये ज्ञान कि वो उनकी भिन्नता और उनकी अभिन्नता और दोनों की अपेक्षाएं, और जितने तर्क युक्तियां दी हैं वे सब हमारे ज्ञान में हाथ पर रखे आंवले जैसे झलकने चाहिए। तो हमारे ज्ञान के विषय ऐसे होने चाहिए कि जब आप चलते फिरते रेल में प्लेन में कहीं बात करो किसी से और ये बात आ जाए तो आपको फिर किताब खोल के देखने का विकल्प नहीं आए, और यदि वो भी भाग्य से विद्वान हो तो वो सारी तर्क और युक्तियां भी उसे आप दे सकें, यदि ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, माने वो उनकी भिन्नता और अभिन्नता दोनों भाषित होनी चाहिए, तब वो हमें अस्यादवादी हुए हम, क्योंकि अनेकान दोनों जो पक्ष है ना वो हमारे ख्याल में हैं। अब वो दोनों हमारे ख्याल में हैं, हमारे प्रमाण के विषय हो गए, अब आवश्यकता के अनुसार हम कभी इसको मुख्य करेंगे, उसे गौण करेंगे, कभी उसे मुख्य करेंगे, इसको गौण करेंगे। एक बात और चली थी शांति जी, आपको पता होगा उस वक्त, तब उसको मुख्य गौण करना ही, आत्मा को कभी गौण करना ही नहीं और व्यवहार को कभी मुख्य करना ही नहीं, फिर मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार, इस बात पर बहुत प्रतिपादन होने लगा था। तो फिर वे नए हैं काय के लिए, जिनवाणी में जब उन्हें कभी मुख्य करना ही नहीं है, उनका उपयोग ही नहीं करना है, तो हैं काय के लिए। वो तो ये समझने के लिए तो जब वो व्यवहार को ही मुख्य करना पड़ेगा है? और फिर आत्मा के हित में आत्मा जाना है तो निश्चय को मुख्य करना पड़ेगा, तो फिर हम सामान्य रूप में जब रहेंगे तब क्या होगा, दोनों ज्ञान में रहेंगे, उसको बोलते प्रमाण ज्ञान। माने ये निश्चय नहीं कि मुख्यता से अनुभूति के काल में ज्ञान होगा, फिर बाहर का जब हम उपयोग तो व्यवहार भी नहीं कि मुख्यता से होगा, और फिर ना हमें ना बाहर का कोई प्रयोजन है ना अंतर का कोई प्रयोजन है, तो फिर ज्ञान तो रहेगा ही ना, तो क्या है सामान्य, सामान्य माने हमें वो अपेक्षा भी ख्याल में है और ये अपेक्षा भी ख्याल में है। जो गुरुदेव बोला करते थे ना, खबर छे बधी खबर छे, ये है उसका अर्थ, माने वो अपर पक्ष भी हमारे ख्याल में है और वो निरंतर ख्याल में है, वास्तव में तो हमेशा ज्ञान तो प्रमाण रहता है। नए ज्ञान तो जब हमें किसी विशिष्ट बात को खोलना हो तो भाषा में हम मुख्य गुण करते हैं, और अपने अंदर में ही जानना हो तो हम ज्ञान में मुख्य गुण करते हैं। 24 घंटा मुख्य गुण करने की बात नहीं है, तो मुख्यता जैसे अपन कहते हैं ना, जिसकी शादी होगी घोड़े पर तो वही बैठेगा, अब उसके चार भाई और हैं और वे बहुत, कोई कलेक्टर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और ये चपरासी है बैंक, जब इसकी शादी होगी तो घोड़े पे ये बैठेगा और कलेक्टर साहब बगल में नीचे चलेंगे, है ना। लेकिन वो सब वो घंटा ये घंटे की बात है, और उसी ऑफिस में वो कलेक्टर है और उसी ऑफिस में वो चपरासी है, तो वहां क्या होगा, कलेक्टर साहब आएंगे तो सब खड़े हो जाएंगे, तो वो उसका भाई खड़ा होगा कि नहीं? तुम तो भाई में ही घबरा रहे, बाप भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? पहले से चपरासी हो, मेहनत कर करा के अपने बेटे को पढ़ा दिया हो और वो वहां बन के आ गया हो, तो खड़ा होगा कि नहीं होगा? घर पे आएगा तो भले ही मुनि के पैर पड़ेगा, उनके लिए पानी भर के पिला के देगा, चाहे जो कुछ करे, लेकिन वो ऑफिस में ऐसा नहीं कर सकता। ऑफिस में जो ऑफिस की जो मर्यादाएं हैं, उसी मान मर्यादा से उसे रहना पड़ेगा, है ना? कहां थे अपन? ऐसा होने पर आत्मा ज्ञानमयता के कारण स्वयं स्वसंचेतक होने से ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी, यही पढ़ रहे थे ना, प्रतिभास और प्रतिभास मान इन दोनों का स्व अवस्था में अन्योन मिलन होने के कारण, प्रतिभास और प्रतिभास मान वही ज्ञेय ज्ञायक, प्रतिभास माने ज्ञेय और प्रतिभास माने ज्ञायक, है ना? प्रतिभास और प्रतिभास मान होने के कारण उनमें भेद भाव करना अत्यंत अशक्य होने से, ऊपर भी कहा था ना अत्यंत अशक्य होने से, सर्व पदार्थ समूह आत्मा में प्रविष्ट हो गए हों की भांति प्रतिभाषित होता है, ज्ञात होता है। यदि ऐसा ना हो तो, अब ये यदि ऐसा ना हो तो ये एक्चुअल नहीं है, ये तो समझने के लिए अपनी कल्पना में अपन खड़े कर रहे हैं। यदि ऐसे नहीं हो तो संसार का नाश हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं हो तो ये हो जाएगा, तो आज तक तो संसार का नाश हुआ नहीं है। तो वो तो सिर्फ हमें अन्वय वितरे घटित करना है ना, इसलिए वो बताते हैं। यदि ऐसा ना हो माने यदि आत्मा सबको ना जानता हो तो ज्ञान के परिपूर्ण आत्म संचेतन का अभाव होने से परिपूर्ण एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। ये क्या कहा बोलो? बहुत राई की वोट में पहाड़ है, बहुत सीधी सरल बात। वो कहते हैं कि सभी को आत्मा नहीं जानते हैं, ऐसा यदि हो माने ऐसा नहीं होगा जाने सभी, तो फिर एक आत्मा को भी नहीं जान सकेगा वो, क्योंकि जानने की प्रक्रिया तो एक ही है ना। ये भी बहुत चला था बीच में कि पर तो प्रतिभाषित होते हैं और अपने आत्मा को हम जानते हैं, क्यों? कि वो कहते हैं बुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये झलकते हैं, है ना? तो मैंने कहा भैया वो आत्मा भी झलकते ही है, तो अनुभूति के काल में भी वो आत्मा झलकते ही है, तो अनुभूति के काल में भी प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, उसका परोक्ष बना वैसा ही रहता है, भले ही उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हो, लेकिन उसे असंग प्रदेश स्पष्ट दिखाई देते हो, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे ना? यद्यपि आचार्य जयसेन, ये तो अपने जयसेन का तो पढ़ लिया था ना, अब देखो मुझे कुछ स्वामी जी का आपको पढ़ के बताना है, इसमें से निकालो। वैसे तो ये वृंदावन दास जी के छंद भी हैं, बढ़िया हैं, पढ़ लेना। स्वामी जी का देखो पेज नंबर 235 पर, मैं ज्यादातर पढ़ता जाऊंगा, ध्यान से सुनना तुम किस बात पे वजन दिया गया है। स्वयं को जानने पर को जानता है, एक ही साथ दोनों को जानता है, पर को जानना अपना स्वरूप है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है वहां बिंब और प्रतिबिंब दोनों को जानता है, वैसे ही स्वयं को और पर को दोनों का जानना एक ही साथ है। कितना स्पष्ट है, अर्थ करने की जरूरत नहीं है ना। अब साधक दशा में भी स्वपर को जानने का स्वभाव है, स्व को जाने और निमित्त और राग को नहीं जाने, निमित्त माने परद्रव्य और राग माने अपनी विकारी पर्याय, तो ऐसा नहीं बनता, पर को नहीं जाने ऐसा नहीं बनता, राग को जाने और स्वा को नहीं जाने ऐसा भी नहीं बनता। यहां स्वपर को जानने की बात है, मानो वो राग भी ज्ञान का गेय बनेगा उसी वक्त और स्वयं आत्मा भी ज्ञान का। ऐसा नहीं अनुभूति के काल में राग ज्ञान का गेय नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। समझ लेना, ये बहुत मुद्दे की बात है, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ऐसा और तो नहीं है, एक अनुभूति के काल में तो कम से कम फिर वो राग ज्ञान का गेय नहीं बनना चाहिए। देखो, वह ज्ञान स्वयं को जानते हुए भी पर को जानता है, दोनों को युगपत जानता है। कोई कहे कि उसने आत्मा को जाना और पर को नहीं जाना तो यह बात झूठी है। दर्पण में जो आम दिखाई देता है वह दर्पण की स्वच्छता दिखाई देती है, वह प्रतिबिंब है। जैसे बिंब और प्रतिबिंब एक साथ हैं, वैसे ही स्वा का ज्ञान और गेयों का ज्ञान एक साथ होता है। साधक ऐसे केवल ज्ञान की प्रतीति करता है। माने एक स्वा और पर का जानना एक साथ होता है, ये कितनी दृढ़ता से कहा। मतलब शांति जी विचार कर, इतने बड़े पंडितों को ये नहीं दिखता होगा, क्या करें बोलो। मेरे पिताजी मेरे से कहते थे कि तुमसे इतने बड़े बड़े पंडित हैं, अभी तुम तो छोकरे हो और तुम ऐसे कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं। अब मैं उनको निकाल के बताता था कि देखो जी आचार्यों का वचन कितना क्लियर लिखा है, मैं क्या करूं, इनकी मानो कि उनकी मानो। वे बड़े आदमी हैं, वो मेरे को गड़बड़ कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे और भी गड़बड़ी कर देंगे, तो इसलिए मैं वस्तु के स्वरूप का लोप कर दूं। मैं तो वैसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अपन वहां से भक्के यहां आए, यहां से भक्के वहां गए, वहां से भक्के, अब यहां से भी भगना पड़ेगा तो कहां जाएंगे, ऐसा बोला। अनादि काल से कहां कहां से भगे, निगोद से लेकर के और कितने भगे हो, कितनी जगह गए, अभी छोड़ो, जहां जाना होगा जहां जाएंगे, जहां होगा जहां रहेंगे, लेकिन मेरे से ये काम नहीं होगा। मेरे पिताजी से मेरी ये बहस होती थी रोजाना, क्योंकि मंदिर में मैं रोजाना लड़के जाता था, रोजाना प्रवचन करता था, वे भी जाते थे, ऐसे लोग भी जाते थे, विरोधी लोग भी जाते थे, और वहां खूब बहस होती थी। अब वे मतलब कमेटी के मेंबर भी होते थे उनमें, समझ गए ना, लेकिन मैं बड़ी दृढ़ता से अपनी बात रखता था, ऐसा रोजाना। इसलिए हमने ऐसी भी सर्वे समाज की है कि कल का भरोसा नहीं, क्या कि कल ये रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसा रोजाना समझ लो। मैं तो पारोली में था ना परमात्म, तो वो मंत्री जी थे, उनका नाम केसी मल जी था, ये बाबू साहब के साले साहब थे, साथ में एक केसी मल सोगानी। तो मैं उनसे कहता था, देखो सुनो, मैं सुबह उठता हूं, अकेला था, शादी हुई नहीं थी, तो मैं अपना बिस्तर बांध के और रस्सी से बांध के, पहले रस्सी उससे बांधना पड़ता था, पहले वो बिस्तर बंद नहीं आते थे, एक दरी से दरी में लपेट देते गद्दे को, तुमने देखा ही नहीं होगा, तुम्हारे दादाजी करते होंगे ऐसा, तुम्हारे दादाजी माने पिताजी के पिताजी, कि उसको दरी में लपेट देते होंगे और फिर उसे एक रस्सी से बांध देते, ऐसी और ऐसी ऐसी बांध देते, तो पूरे में बांध के ऊपर ऐसा रख देता था। तो मैं कहता हूं बिस्तर में सुबह बांध के रखता हूं, क्यों कि यदि शाम को रहना पड़ा तो खोलूंगा, लेकिन यदि जाना पड़ा तो बांधना ना पड़े। तो मेरा बिस्तर बंधा रखा है, ऐसा कहता था मैं बराबर। अभी वो तुम्हें समाज भी देखने को नहीं मिलेगा, कितनी दुनिया बदल गई, और तुमको बातें हम जो बताते हैं तो उसको तुमको ऐसा अनुभव नहीं हो सकता, तुम्हारे हास्य रस का विषय बन के रह जाता है। लेकिन वो कितना कठिन काम था, आप समझे ना, कितना वो इसकी कल्पना आपको नहीं हो सकती। कहां पढ़ रहे हैं अपन, जो अपनी पूर्ण पर्याय को नहीं जानता वह सर्व को नहीं जानता, और जो सर्व को नहीं जानता वह अपनी पूर्ण पर्याय को नहीं जानता। एक समय में केवल ज्ञान पूर्णता स्वपर को जानता है, है ना। भगवान लोकालोक को जानते हैं यह व्यवहार से है, और व्यवहार अभूतार्थ है, इसलिए केवल ज्ञान पर को जानना अभूतार्थ है ऐसा अज्ञानी कहता है। समझ लो आप, केवल ज्ञान का पर को जानना अभूतार्थ है ऐसा अज्ञानी कहता है, ये गुरुदेव कह रहे हैं। परंतु पर संबंधी ज्ञान स्वयं का है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वयं का स्वभाव है। केवल ज्ञान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानता, इसलिए केवल ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है ऐसा कहा जाता है। अपने में तन्मय होकर जानता है, इसलिए स्वागो निश्चय कहा जाता है ऐसा कहा है। कितने तथा कोई कहे कि ज्ञान सविकल्प है, देखो एक तो ये विकल्प राग वाला विकल्प और एक ज्ञान का स्वरूप भी सविकल्प है। तो कोई कहता है ज्ञान तो सविकल्प है, वो इस राग का विकल्पना और ज्ञान के विकल्पने का भेद नहीं जानते हैं। तो और विकल्प का अर्थ है दोष, इसलिए ज्ञान में दोष है। कोई ऐसा कहे तो यह भूल है। ज्ञान सविकल्प है और विकल्प माने दोष, इसलिए ज्ञान दोष वाला है। यहां सविकल्प का अर्थ भेद से है, दोष से नहीं है, है ना। सिद्ध का केवल ज्ञान भी सविकल्प है, देखो। अर्थात वहां सविकल्प का अर्थ दोष नहीं अपितु वह भेद सहित जानता है, यह है। और भेद सहित माने मैं आत्मा हूं ऐसा भेद दर्शन नहीं करता। लेकिन इसमें भेद क्या हुआ, ये भेद मैं आत्मा हूं इसमें भेद की बात नहीं आई ना, इसी का नाम भेद, इसी का नाम विकल्प है। मैं आत्मा हूं इसका नाम विकल्प है, इसको विकल्प नय भी बोलते हैं और इसी को भेद नय भी बोलते हैं। ये विकल्प नय और भेद नय ये दोनों एक ही नय के नाम है। भेद करना यह ज्ञान का कार्य है, मैंने दर्शन नहीं करता ऐसा भेद। ज्ञान सर्व पदार्थों को द्रव्यगुण पर्याय को भेद करके जानता है, इसलिए वह साकार है। साकारम ज्ञानम और निराकारम दर्शनम का जी अर्थ है। यदि आत्मा पूर्ण पर्याय को नहीं जाने तो वह अनंतों को नहीं जानता। एक जानने में आए और दूसरा जानने में नहीं आए ऐसा नहीं होता। ये सुवर प्रकाशक का स्वरूप कितना स्पष्ट है। आत्मा को तो जाने किंतु लोकालोक को जानने में न आवे ऐसा नहीं होता। तथा लोकालोक के क्षेत्र भी जानने में आवे किंतु तू तुझे नहीं जाने ऐसा भी नहीं होता। दोनों युगपद हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब और बिंब दोनों का ज्ञान होता है, वैसे ही भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण के समान है। हो गया जी, मतलब अर्थ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फिर उलझ जाएंगे। मतलब बहुत स्पष्ट लिखा है सरलता से, आप इसे पढ़ लें तो आपको ख्याल में आ जाएगा यहां पर क्या कहा। अब गाथा 48 में बताया है कि जो सर्व को नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता। अब इस 49वीं गाथा में कहते हैं कि अपने चिदानंद स्वभाव के अवलंबन से ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त होता है। ऐसी परिपूर्णता को जो नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। यह जैन शासन का महारहस्यपूर्ण स्वरूप है ना। तेरा स्वभाव ज्ञान है, जो स्वभाव है वह अपूर्ण अधूरा नहीं होता, माने आधे को जाने किसी को जाने किसी को नहीं जाने ऐसा नहीं होता, और वह पराधीन भी नहीं होता। ऐसे पूर्ण स्वभाव के सन्मुख होकर ज्ञायक का निर्णय करना ही सम्यक दर्शन है, क्रमबद्ध का निर्णय है, सात तत्व की श्रद्धा है, सुपर भेद विज्ञान है और सर्वज्ञ का निर्णय इसमें आ जाता है। अब ये जो है ना पैरा एक, ये सारा जो अपने गाथा को पढ़ा है उसका कंक्लूजन है, जो मैंने अपनी भाषा में सरल भाषा में लिख दिया। इसका अर्थ समझ में आ जाए तो समझ लेना पूरी गाथा का अर्थ समझ में आ गया। अपने पास समय है इसलिए इसे अपन पढ़ लेते हैं। अब कल 50वीं और 51वीं गाथा दोनों 51 एक साथ है ना, देखो दो गाथाएं एक साथ हैं तो इन्हें पढ़ेंगे। अनंत गुण पर्यायों सहित, देखो संपूर्ण पदार्थों को जानने की सहज प्रक्रिया यह है। प्रक्रिया माने जानने की विधि, कैसे जाना जाता है कि संपूर्ण पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायों सहित केवल ही आत्मा के केवल ज्ञान में एक साथ झलकते हैं। संपूर्ण पदार्थ झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञात होते हैं, जाने जाते हैं। इससे यह सहज ही सिद्ध होता है कि जिस केवल ज्ञानी व्यक्ति ने अपनी केवल ज्ञान पर्याय को जाना, उसके ज्ञान में केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित पदार्थ भी सहज भाव से जाने ही गए हैं। उसने कह दे केवल ज्ञान पर्याय को जाना कि नहीं जाना अपने को, तो केवल ज्ञान पर्याय को जाना कब कहा जाएगा कि जब केवल ज्ञान में जो जाना गया है वो भी जानने में आए, तो केवल ज्ञान पर्याय को जाना कहा जाएगा। किनके लिए? जो सर्वज्ञ है उनके लिए। अपने लिए क्या है? हम केवल ज्ञान को जानना क्या है कि केवल ज्ञान में सारे देवगुण पर्याय है, सब झलकते हैं, हमारा इतना काम है। और उनका वो जो जैसे झलकते हैं वैसे पूरे जानना, ये उनका है। समझ गए ना? अतः यह कहना उचित ही है कि जो व्यक्ति संपूर्ण गुण पर्यायों सहित स्वयं को जानता है वह सभी पदार्थों को गुण पर्यायों सहित जानता ही है, और जो व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण गुण पर्यायों सहित नहीं जानता वह अन्य सभी पदार्थों को भी नहीं जान सकता। अब जितनी प्रकरण चल रहा ना, खासकर दो गाथाएं, उनमें यही बात है कि जो अपने को जानता है वो सबको जानता है, सबको जानता है ना, और दोनों को सारा एक साथ ही। ऐसा नहीं, जब अपने को जानेगा तो दूसरे को नहीं जानेगा, जब दूसरे को नहीं जानेगा तो अपने को जानेगा। जब ऐसा कहते हैं तो हम पर के जानने को अपना आत्मा को जानने का प्रतिद्वंदी समझ लेते हैं, तो उन्हें शत्रु मानने लगते, जबकि ऐसा है ही नहीं, बल्कि उल्टा है कि यदि पर को नहीं जानेंगे तो स्व को भी नहीं जानेंगे। यदि स्व को जानना है तो पर के जानने से परहेज नहीं करना चाहिए, और हम तो पर के जानने में परहेज करते हैं। क्या पर के जानने में रस नहीं होना अलग बात है, और परहेज करना अलग बात है। देखो, अपने यहां से रेल में बैठे आगरा गए, तो हम रेल में बैठे हैं और सारे पदार्थ हम खिड़की में से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो सैकड़ों वृक्ष, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब जो वहां हैं वो सब हमारे ज्ञान में आते हैं ना जानने में। हमें कोई रस नहीं है उनके जानने में। कोई नदी मदी आती है थोड़ा बिकल जरूर होता है, जल्दी झांक के देखें, नहीं बाकी सारी जगह हमें कोई जानने का रस नहीं है, और सब जानने में आते हैं। अब हमें जानने के रस का निषेध किया तो वो जानने का निषेध करने लगता है, तो जानने के निषेध में क्या हो जाएगा? फिर उसे आंखें बंद करनी पड़े। क्यों? क्योंकि अभी दिखना चाहेंगे, ये दिखना चाहे कौन, ये पेड़ पौधे, ये तो उल्टी प्रक्रिया हो गई कि जान नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जानने में आ जाए तो अपराध हो गया, ऐसा तो हमारे चित्त में नहीं होना चाहिए। रस पूर्वक जानना अलग है और जानने में आना अलग है। तो जब कोई निषेध करता है तो वो रस पूर्वक जानने का निषेध करता है, तो रस का निषेध करता है। जैसे अभी अभी तो क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं है, बहुत दिनों से मैं आया ही नहीं हूं। आगरा से हम यहां आते थे जयपुर, तो शाम को 5-6 बजे वहां से गाड़ी चलती थी और यहां सुबह 3:30 बजे रात को आती थी, और कोई दूसरा साधन नहीं था, 24 घंटे में एक ही गाड़ी थी। तो जब वहां से चलते थे और यहां से जाते थे तो रात के 1 बजे बैठते थे और सुबह 7 बजे आगरा पहुंचते थे 8 बजे। दोनों टाइम वहां पर आगरा में फोर्ट से और ईदागाह है और दो स्टेशन थे 3-4, उनमें सैकड़ों आदमी दोनों तरफ रेल के लेट ट्रेन जाते थे, बिल्कुल अभी ऐसे खुले मैदान में जाते थे और रेल के डब्बे में से सब दिखते थे, महिलाएं पुरुष सब, और जितने भी टूरिस्ट आते थे विदेश से वो सब आगरा से उसी गाड़ी से आते, एक ही गाड़ी थी, फिर शाम को आते और यहां से वहां जाते तो वो दृश्य देखते थे और कितने फोटो फटाफट फोटो खींच के विदेशों में ले जाते और दिखाते कि हिंदुस्तान वाले ये है, हमने अपनी आंखों से देखा है ये सब है? अपने साथ बच्चे बैठे हो ना तो बेबी रेस्टोरेंट पर देखते थे, चुप जाओ बैठ जाओ लेट जाओ सो जाओ, अपन चाहते थे कि वो नहीं देखे, उन्हें भी कौतूहल तो होता ही था ना, और वैसे सहज कौतूहल नहीं हो, अब बैठे दिख जाए तो दिख जाए, नहीं देखें तो नहीं देखें, क्या है? अब अपन को इस बात में थोड़ी सी हंसी आई ना, अब केवल ज्ञानी को क्या होता होगा, उसको तो वे जो रेलवे के लाइन के अगल बगल में ऐसा करते थे वे ही कभी कभी दिखते थे, लेकिन वो केवल ज्ञानी को तो जो लेटरिन बाथरूम में जो तुम किवाड़ लगाकर चटकनी लगाकर करते हो वो भी सब दिखता है, क्या करो तो उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि देख करके मुझे नहीं देखना है, ये नहीं देखना है तो इनडायरेक्ट वे में केवल ज्ञान का निषेध हो गया कि केवल ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ हो गया ना, और केवल ज्ञान तो स्वभाव है, अच्छा तेरे को केवल ज्ञान को नहीं चाहिए हो गया माने पर को जानना मेरे को नहीं चाहिए और पर को जानना स्वभाव है, उसका क्या अर्थ हो गया, माने तेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, अब वो तो अनंत दुख जाएगा अनंत सुख आएगा, अब अनंत ज्ञान आएगा तो अनंत सुख आएगा साथ में, और अनंत अल्प ज्ञान जाएगा तो दुख भी जाएगा साथ में, तो हमने इनडायरेक्ट वे में दुख को ही उपादेय मान लिया और सुख को हे मान लिया, तो उसकी क्या दस परिणाम निकलना चाहिए, वो परिणाम निकलेगा।